थोड़ा विषय कठिन है, ध्यान देने की बातें हैं। ऐसा विवेचन एक साथ मिलता नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। जैसे पाताल में रहने वाले को सूर्य क्या चीज है पाताल में नहीं बताया जा सकता, उसको तो पाताल से बाहर लाकर ही समझाया जा सकता है। इसी प्रकार ब्रह्म को किसी प्रकार समझाया नहीं जा सकता है। ब्रह्म की प्राप्ति होने पर समझा जा सकता है। बहुत अच्छा प्रवचन है अभी। चालू ही किया है। जैसे पाताल में रहने वाले को सूर्य क्या चीज है पाताल में नहीं समझाया जा सकता, उसको तो पाताल से बाहर लाकर ही समझाया जा सकता है। इसी प्रकार ब्रह्म को किसी प्रकार नहीं समझाया जा सकता, ब्रह्म की प्राप्ति होने पर ही वो समझ में आता है। ये एक सिद्धांत है। अब किसी ने प्रश्न कर दिया, ब्रह्म तो खुद ही है, फिर इसकी प्राप्ति क्या करना? खुद ही ब्रह्म है तो फिर प्राप्ति क्या करना? और ये जगत है ही नहीं तो इसका नाश क्या करना? उत्तर दे रहे हैं सेठ जी, 2 मिनट कीर्तन करो फिर समझाएंगे। श्रीमन नारायण का कीर्तन कराया। कीर्तन कराने के बाद लिखेड़ो बोलू
नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण
आनंदमय 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 पूर्णानंद आनंद आनंद सच्चिदानंद, ऐसा है लिखा है इसमें। महाराज जी से तो ऐसा प्रश्न करते तो महाराज जी तो फटकारते हैं उसको। तुमको अनुभव है क्या ब्रह्म का कि तुम्हें खुद ही ब्रह्म हूं? सेठ जी उत्तर दे रहे हैं, बात यह है कि ब्रह्म जो है वो वेदांत के अनुसार अपने आप में है, और माया का कार्य तीनों ही काल में नहीं है। जब वस्तु है ही नहीं तो अभाव क्या करना, और जो प्राप्त ही है उसे प्राप्त क्या करना? ये ठीक है, आपकी बात ठीक है, परंतु जो अप्राप्ति का भ्रम है उसे दूर करना है। और संसार नहीं दिखने पर भी दिखता है उसे भी दूर करना है। जैसे पूर्व की दिशा स्थान में बने हुए बिना हुए पूर्व की दिशा स्थान में बिना हुए पश्चिम दिखता है तो उसे निश्चय करना है कि ये पूर्व है। निश्चय करा देने पर पूर्वी दिखता है, पश्चिम कहाँ गया? अरे गया क्या, पश्चिम था थोड़े ही, भ्रम से दिखता था। पूर्व कोई आया थोड़े ही, पूर्व कहीं गया थोड़े ही, पूर्व तो पहले से ही था। अपने इधर सूर्य इधर उगता है, ऋषिकेश में सूर्य उधर उगता है, तो वहां कभी कभी भ्रम हो जाता था कि पूर्व दिशा कौन सी है, कि पूर्व दिशा ये है, अरे नहीं ये तो अपने सिंथल में होती है, वहां तो इधर पूर्व, माने पूर्व दिशा यहां यूं दिखती है, वहां इधर, पूर्व दिशा थोड़ी बदल गई, भ्रम होता है। लेकिन जब पता चल गया कि ऋषिकेश की तरफ पूर्व इधर ही है, पहाड़ की तरफ इधर पश्चिम है, तो फिर भ्रम नहीं होता है। इसी प्रकार से अप्राप्ति का भ्रम हो रहा है, उसे दूर करना है। भगवान तो हमको मिले हुए ही नहीं है, भगवान कब मिलेंगे, भगवान तो हैं तो मिलेंगे, क्या पता हैं कि नहीं, और संसार नहीं दिखने पर भी दिखता, ये तो है ही ना संसार, तो भगवान तो है नहीं, संसार है, ये जो भ्रम है इसको दूर करना है। एक भाई कुंभ का मेला देखने गया, साथ में अपने तीन बच्चों को ले गया, एक बच्चे को कंधे पर बैठाया और दो लड़कों को दोनों हाथों में पकड़ लिया। कुछ देर के बाद वो चौंक पड़ा, रोने लगा कि अरे मेरा एक लड़का कहाँ गया, एक लड़का कहाँ गया, रोने लगा। किसी ने पूछ लिया, क्या हुआ भाई, क्यों रोते हो? उसने कहा, क्या करूं जी, इस कुंभ के मेले में मेरा लड़का गुम हो गया। तो उसने पूछा, कितना बड़ा था, 6 वर्ष का था कि 4 वर्ष का था? दूसरे आदमी ने पूछा कि तुम्हारे पास कितने लड़के थे? कि 3 थे। तो कौन सा लड़का गुम गया? कि एक लड़का गुम गया। कि तुम्हारे एक तो कंधे पर है, 2 तुम्हारे, ओ हाँ हाँ हो, ठीक, मिल गया, सुखी हो गया। ऐसे ही परमात्मा का और संसार का हमारा संज्ञान है। मिले हुए तो परमात्मा है, वहम होता है कि परमात्मा हमसे अलग हो गए। और जब सत्संग करते हैं तब पता चलता है कि अरे भगवान तो हमारे स्वरूप में ही विराजमान है। फिर प्रश्न करने वाले ने प्रश्न किया, तो ये पहले से ज्ञान तो था पर अज्ञान कैसे हो गया? जब ये परमात्मा का रूप ही है तो फिर इसको अज्ञान कैसे हो गया? उत्तर, अज्ञान हुआ नहीं है, अज्ञान की कल्पना हुई है। अज्ञान कोई नया पदार्थ थोड़ा ही है कि अज्ञान हो जाएगा। अज्ञान हुआ नहीं, अज्ञान की कल्पना हुई है। प्रश्न, कल्पना फिर कौन करता है? उत्तर, माया में रहने वाले कल्पना करते हैं। ब्रह्म की दृष्टि से तो कुछ है ही नहीं, एक को प्रतीत होता है, एक को प्रतीत नहीं होता। प्रश्न, तो इसमें 2 आ गए, और यह क्यों हो गया, हमें अज्ञान क्यों हो गया? उत्तर, अज्ञान हुआ नहीं है, सदा से ही है। यदि यह होता कि ज्ञान स्वरूप होता है फिर अज्ञान हो गया, ऐसी बात नहीं हुई है। ऐसा होता तो फिर ज्ञान होने पर अज्ञान होता है, ये सिद्धांत ही बन जाता है। ज्ञान हो, पहले हमको ज्ञान था और फिर अज्ञान हो गया, यदि ये बात रहेगी तो जब भी हमको ज्ञान होगा तो फिर उसके बाद अज्ञान होगा ही। और ब्रह्म तो तर्क से सिद्ध नहीं कर सकते, तर्क से सिद्ध होता तो सबको ही प्राप्ति हो जाती, सब तर्क तो करते ही हैं। साधन करने से वो ब्रह्म के समझने का लायक होता है, तब उसको प्राप्ति होती है। जिनके ज्ञान में ब्रह्म की प्राप्ति नहीं है उन्हीं को प्राप्ति करनी है, और जिनके ज्ञान में प्राप्त है उन्हें प्राप्त नहीं करना है। तो है उनके अनुभव में आ गई, शंका होती है कि जिसको ज्ञान हो गया तो फिर वो मूर्खों को क्यों उपदेश देता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में कोई मूर्ख रहा ही नहीं। झूठे दुखियों का झूठा दुख क्या दूर किया जावे, तो इसका उत्तर देते हैं। एक आदमी नींद में सो रहा है और हम दो आदमी जगे हुए हैं। सोने वाला आदमी नींद में कांपता है और दुखी होता है, तो हमने दुखी समझकर उसे जगा दिया और पूछा, अरे भाई क्या बात है, तुम क्यों कर रहे हो? उसने कहा, जी अभी स्वप्न देख रहा था, एक बाघ आ गया और वो बाघ मेरे पास आकर यूं झपटा मारा तो मैं तो डर गया, तो मेरे देखो घबराहट हो गई, तो मुझे क्या पता कि सपना ही है, मैं तो उसको सच्चा ही बाघ समझ रहा था, घबराहट हो गई। अब क्या हो रहा है? अब एकदम शांति है, अब पता चला कि तो सपना है, उस समय तो मुझे बाघ ही दिख रहा था। बस इसी का नाम जागने वाला और जगाने वाला। तो जो जगाने वाला होता है वो ज्ञानी होता है, जो स्वप्न के अंदर सिंह से डरा हुआ है वो सोने वाला है। दोनों ही समझ रहे हैं, जागने वाला भी समझ गया सोकर के जगा कर अपने तो मिथ्या था, और जगाने वाला तो समझ ही रहा था कि सपन में बोल रहा है। इसी तरह से झूठे दुख को हटा देना ये महात्माओं का काम है। महात्माओं को दया आती है, अरे संसार तो सपना है, झूठे ही दुखी हो रहे, कोई मर गया तो दुखी है, कोई परिस्थिति नहीं मिली ऐसी अच्छी परिस्थिति नहीं मिली, धन है मान है नहीं, तो ये सब झूठा है। सूक्ष्म शरीर इस स्थूल शरीर के अंदर है, तो सूक्ष्म में बहुत ज्यादा क्रिया होती है तब स्थूल में आती है। हम इस मकान में रहते हैं, इसमें साधारण हल्ला गुल्ला मचाते हैं तो इस मकान पर असर नहीं होता, ज्यादा हल्ला मचाते हैं धूमधाम करते हैं तो दीवारें हिलने लगती है। इसी प्रकार स्वप्न की हालत में मार काट के अवसर पर सूक्ष्म शरीर का असर स्थूल शरीर पर आ जाता है। प्राणों की खोली में मनोमय कोश है, बुद्धि और उनमें बुद्धिमय कोश है, उसमें आनंदमय कोश है और उसमें आत्मा है। मरने पर सूक्ष्म शरीर जाता है तब स्थूल शरीर से सूक्ष्म का संबंध नहीं रहता, तब इस पर असर नहीं पड़ता, शरीर पर कोई असर नहीं पड़ता। स्थूल शरीर की बहुत कम आयु है, किसी की 10 20 40 50 100 वृक्ष की 1000, बीच में प्रश्न कर लिया। स्वप्न में मन कलकत्ते में कहीं जाता है तो क्या वास्तव में जाता है? नहीं, जाता नहीं है, मन में कल्पना होती है। मन कोई कलकत्ते में जाता नहीं, कल्पना होती है। स्वप्न में वास्तव में मरे हुए को जिंदा देखते हैं, जिंदे को मरा देखते हैं, ये कल्पना नहीं तो क्या है? हमें जो ये चीज बाहर दिखती है वे भी बाहर नहीं अंदर ही हैं। जैसे स्वप्न में खुद बनकर एक देश में होकर इस स्वप्न के संसार को देखते हैं, हम ही खुद बनते हैं और हम ही देखते हैं। इसी तरह हम संसार में आकर एक देश में स्थित होकर देखते हैं। जैसे स्वप्न में हम और पर माने दूसरा दो दिखता है, वे कल्पना से दिखता है, वास्तव में जो दूसरा है वो हम ही है, हमारे अलावा वहाँ स्वप्न में कोई चीज दूसरी नहीं है। इसी प्रकार अभी भी हम और आप ये पर नहीं है। हाँ, स्वप्न में एक चीज सच्ची है, जो स्वप्न देखने वाला है वो दृष्टा सच्चा है, दृश्य सच्चा नहीं है। हम और पर की कल्पना मिटाने के लिए शास्त्र कहता है, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन है। एक आत्मा अनंत चेतन, सर्वव्यापी अनंत चेतन में सब समाये हुए हैं। हम और पर की समझ में कुत्ते भी हैं। जैसे स्वप्न में एक ही अनेक दिखता है, उसी प्रकार जागृत में एक ही है और वह अनेक दिखता है। प्रश्न, कुत्ते में भी ब्रह्म है, पत्थर में भी है, तो उसमें क्यों नहीं दिखता? उत्तर, काठ माने लकड़ी, साधारण कांच और सूर्यमुखी कांच, इन तीनों में सूर्य क्या भिन्न भिन्न प्रकार से दिखाई नहीं देता है? एक सूर्य की किरणें होते हुए भी सूर्य का स्वरूप भिन्न भिन्न नहीं दिखता। इस प्रकार पदार्थों के भेद से इनमें भेद दिखता है। सूर्य की दृष्टि से तो कोई भेद नहीं है, समान प्रकाश है, पर काठ में प्रकट नहीं होता, साधारण कांच में साधारण ढंग से प्रतीत होता है, सूर्यमुखी कांच में विशेष प्रकट होता है। हम लोगों का शीशा सूर्यमुखी शीशा है, कुत्ते का है वो साधारण शीशा है, और पत्थर है वो काठ जैसा है। भूमिरापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृति रष्टदा। भगवान ने आठ प्रकार की जो प्रकृति बताई, अपरा बताई, इसीलिए बताया कि यहाँ मेरा इतना ज्ञान नहीं होता है जितना जीव में होता है। आईने आईने में भी तो फर्क होता है, पशुओं का आईना कमजोर है, बुद्धि कमजोर है, और हमारी बुद्धि तेज है। साधन झूठा होकर भी फल सच्चा है, ये आपको हम बड़े आश्चर्य की बात बता रहे हैं कि सब संसार झूठा है, तो ये सत्संग करते हैं ये भी झूठा है, नाम जप करते हैं ये भी झूठा है, शास्त्र चिंतन ये सब झूठा है, क्योंकि ये सब संसार में ही हो रहा है हमारे, तो ये सब झूठा है, तो झूठे का फल भी झूठा ही होना चाहिए। कहते हैं नहीं, साधन का फल सच्चा है, ये एक आश्चर्य की बात है। अब इसको बताते हैं, जैसे एक भाई को दूज का चंद्रमा दिखा, वह दूसरों को इस प्रकार बतलाता है कि देखो मकान के कोने से चार अंगुल ऊपर आप देखो तो थोड़ा सा टेढ़ा चंद्रमा दिखेगा। अब कोई ऊपर आकर देखे तो कोने से थोड़ा नजदीक उसको चंद्रमा दिखाएगा। अब वास्तव में मकान से बहुत दूर पर हम खड़े हैं और मकान के कोने से चार अंगुल की दूरी पर, से चार अंगुल की दूरी पर ही है क्या? ये सब झूठा है, सब वर्णन झूठा है। परंतु जब चंद्रमा का ज्ञान हो गया तो ये बात तो सच्ची हो गई ना। ऐसे ही संसार में भिन्न भिन्न जितने भी संप्रदाय हैं, वे एक दूसरे की दृष्टि से सभी झूठे हैं। तर्क से और वस्तु से देखा जाए तो जो जो महात्मा जिस मार्ग से गए हैं उन सभी का, जैसे वल्लभाचार्य जी, शंकराचार्य जी आदि का समझाना ठीक है, सबका फल सच्चा है, सबकी दृष्टि परमात्मा पर है, पर वर्णन करने में सबकी बातें एक दूसरे से मेल नहीं खाती हैं। हमने जिस तरह से समझाया वो तरीका वह एक तरीका ही तो है। तरीका काम की चीज है, वास्तव में तरीका सच्ची चीज है। और भी कई तरीकों से समझाया जा सकता है। भविष्य में दूसरे प्रकार की सृष्टि होगी तो उनको समझाने के लिए भी नए नए तरीके काम में लिए जाएंगे, उनकी बुद्धि के अनुसार समझाया जाएगा। जैसे पहले रेडियो नहीं था, तार नहीं था, बिजली नहीं थे, तो शास्त्रों में इनका उदाहरण नहीं मिलता। पर अब आजकल रेडियो हो गया तो इसको उदाहरण से हम समझा देते हैं। पाश्चात्य जगत ने अभी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश के तत्व की बात बताई है, इन्हीं में ही खोज की, आगे उन्होंने खोज नहीं की। अभी मन के तत्व को ये समझते नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने तो सिद्धियों को भी हे बताया है, विघ्न बताया है, त्याज्य बताया है। अभी जैसे हम बिजली का उदाहरण देते हैं कि देखो बिजली सब यंत्रों में रहती है, यंत्र अलग अलग हैं पर बिजली एक है, ऐसे ही प्राणी पदार्थ अनेक हैं, उनमें रहने वाला एक परमात्मा है। आगे चलकर न जाने क्या क्या आविष्कार हो जाएंगे, इसका उदाहरण दिया जाएगा, परंतु अपने लिए इतनी बात समझना पर्याप्त है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण
नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण
नारायण नारायण जीव नारायण।